आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार, मेरा नाम बिंदिया है। मैं मुंबई से हूँ और मैं शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च का कार्य कर रही हूँ। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। ये है आपका अध्याय क्रमांक 6 और इसका शीर्षक है न्यायपालिका। तो हमने हमारे जो देश के संविधान में बार बार हमने पढ़ा कि 3 अंगों के बारे में बताया गया है सरकार के, इस देश के, जिस पर ये देश की जो लोकतांत्रिक आस्थाएं हैं वो टिकी हैं। इनमें से 2 के बारे में हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका और विधायिका। आज हम तीसरे अंग को समझने वाले हैं, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, उसको आज हम जानेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो ये जो न्यायपालिका है, ये दोनों अंग जो हमारे कार्यपालिका और विधायिका, उनके कार्यकलापों पे भी नजर रखती है और ये आम लोगों के जीवन में भी जो विवाद होते हैं या कुछ निजी संस्थाओं के जो आपसी विवाद होते हैं, सरकारों के आपस के बीच में जो विवाद होते हैं, उन सब पर निर्णय लेने का इसको अधिकार हमें जो हमारा संविधान है उसने दिया है। तो ये जो न्यायपालिका है सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, वो विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में जाना जाता है। इसकी बराबरी जो हम अमेरिका का जो जुडिशियल सिस्टम है, हम कहते हैं कि जो अमेरिका का न्यायिक प्रक्रिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसी कैटेगरी में भारत की भी जो न्यायिक प्रक्रिया है या हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो उस कैटेगरी में आता है। और संविधान की व्याख्या करने में, संविधान को सुरक्षा प्रदान करने में हमारी जो न्यायपालिका है उसने अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो हमारी न्यायपालिका है वो किस तरीके से बनी है, उसका गठन कैसे होता है, वो किन अधिकारों की रक्षा करती है। क्योंकि हम जब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो हम जान चुके थे कि संविधान ने उसकी सुरक्षा न्यायालयों के हाथ में दी है। क्या वो अन्य अधिकारों की भी रक्षा करती है? स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? ये न्यायपालिका संविधान की व्याख्या कैसे करती है? और जानेंगे कि इसका भारतीय राजनीति से किस तरीके का संबंध है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लें और पृष्ठ क्रमांक 125 पर आ जाइए। 125। अब न्यायपालिका को तो हम बाद में जानेंगे, पर सबसे पहले सवाल आता है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। सबसे पहले तो न्यायपालिका का क्या कार्य है कि जो भी विवाद उठते हैं उनको सुलझाना। वो विवाद 2 व्यक्तियों के बीच में भी हो सकते हैं, कुछ समूहों के बीच में भी हो सकते हैं, व्यक्तियों के समूहों के बीच में हो सकते हैं, व्यक्ति और सरकार के बीच हो सकते हैं, और सरकार के बीच में भी हो सकते हैं। तो ये हर समाज में ये जो विवाद है ये उठते रहते हैं, ये हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ है। और ये जितने भी विवाद हैं ये सब कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर चलते हैं। कानून के शासन का सिद्धांत, रूल ऑफ लॉ, ये इंग्लैंड में ये इस रूल ऑफ लॉ को अपनाया गया था, भारत में भी इसको अपनाया गया है। अर्थात पहले कानून के शासन को समझते हैं कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, सभी के लिए एक समान कानून लागू होगा। तो ये जो कानून लागू करने के लिए, इस कानून के शासन को लागू करने के लिए एक संस्था की भी जरूरत है, एक स्वतंत्र संस्था की जरूरत है जो किसी भेदभाव के बिना कानून को लागू करे। और इसीलिए हमें एक न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। जो न्यायपालिका है इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि वो कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है। जो न्यायपालिका है वो कानून के अंतर्गत काम करती है। जो भी संविधान में कानून है या अलग अलग जो कानून बनाए गए हैं देश में, उन सभी कानूनों के आधारित होकर वो निर्णय लेती है और निर्णय देती भी है। कोई भी मुद्दा हो, जीत कानून, जो सही कानून बना है उसकी होनी चाहिए, ये हमारी न्यायपालिका सुनिश्चित करती है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की भी रक्षा करती है, हमने पहले भी पढ़ा, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, और जो भी विवाद है उनको वो कानून के हिसाब से हल करती है और सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी कोई एक व्यक्ति या समूह, मतलब कोई तानाशाही ना ले ले। देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमारी जो न्यायपालिका है उसकी बहुत हमें जरूरत है, और इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। स्वतंत्र अर्थात उसमें कोई पॉलिटिकल राजनीतिक दबाव ना हो। तो ये दबाव क्योंकि अगर उस पर रहेगा तो स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर पाएगी, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरत थी स्वतंत्र न्यायपालिका की। अब ये कैसे जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होगी, इसको भी समझना जरूरी है। तो अब हम समझते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो सरकार के अन्य दो अंग हमने पढ़ा, विधायिका और कार्यपालिका के बारे में, तो इन दोनों अंगों को न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार से ये बाधा ना पहुंचाएं, ये सबसे जरूरी है। अगर ये दोनों अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के अंदर हस्तक्षेप करने लगे तो वो ठीक से न्याय नहीं कर पाएगी। तो इन दोनों के हस्तक्षेप से बचाना था न्यायपालिका को। उसके बाद जो सरकार के अन्य अंग भी हैं वो भी न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें, और जो न्यायाधीश है, जो हमारे जज होते हैं, वो बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तभी वो न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका कहलाएगी। तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह। तो जो न्यायपालिका है ये हिस्सा तो है हमारी राजनीति का, लेकिन उससे दूर है, क्योंकि इसमें संविधान ने जो अपनी सबसे ज्यादा आस्था दिखाई है वो देश की न्यायपालिका में ही दिखाई है। जो हमारा लोकतंत्र है उसने की भी जो आस्था है वो अभी भी न्यायपालिका में रहती है, और ये न्यायपालिका जनता के प्रति जवाबदेह भी है। वो उसको जो भी मुद्दे हैं उसको जनता के सामने वो सीधे नहीं जाते, लेकिन जनता का विश्वास, आज भी आप कोई भी बात होती है या कोई विवाद होता है तो कहा जाता है ना कि मैं फाइनली तुमको मैं कोर्ट में देखूंगा, मतलब हमें आज भी न्यायालय पर जो विश्वास है वही कारण है कि जो हमारी न्यायपालिका है उसका स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। अब आप अगले पृष्ठ पे आएंगे। अब बात आती है कि ठीक है, हम जान गए स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, परंतु इसको स्वतंत्रता कैसे दी जाए, इसको कैसे सुरक्षित बनाया जाए। तो इसके लिए जो हमारा संविधान है उसने कई उपाय किए हैं। उसमें सबसे पहले उपाय किया कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, जो जज बनेंगे उनकी नियुक्ति में विधायिका का कोई रोल नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि वो लोग जो पार्टी पॉलिटिक्स से उससे दूर रहेंगे। नहीं तो एक पार्टी वाला बोलेगा हमने तुम्हें चुना, तुम हमारे हिसाब से काम करो, दूसरा बोलेगा नहीं हमने तुम्हें चुना, तो ये जो दलगत राजनीति है उसकी कोई भूमिका ना रहे। उसके बाद जो भी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक उसको कानून का अनुभव होना चाहिए, उसको कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो अगर उसके पास एक्सपीरियंस होगा तो वो काम भी अच्छे से करेगा और उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ये नहीं देखा जाता कि वो किस घराने का है या किस राजनीतिक विचार का है। नहीं, एक जज बनने के लिए आपको कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, ये उसकी स्वतंत्रता को बरकरार करने के लिए दूसरा कदम है। उसके बाद जो न्यायाधीश है उनका कार्यकाल फिक्स होता है, मतलब रिटायर तो होते हैं एक एज पे जाकर, लेकिन उनको ऐसे ही नहीं हटा जा सकता। कुछ विशेष स्थितियां आ जाती हैं जहां पे वो कुछ ऐसा कार्य करे जो संविधान के खिलाफ हो तो उनको हटाया जा सकता है, परंतु उनको हटाया नहीं जा सकता। और ये जो कारण है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अब जो न्यायाधीश है उन्हें पता है कि हमें नहीं हटाया जाएगा, तो बिना भय और भेदभाव के वो अपना काम कर सकते हैं। जैसे अब राज्यपाल है उनको हटाया जा सकता है, हमने देखा ना राज्यपाल की नियुक्ति होती है, हटाया सकता है। ऐसे भारत में कई पद हैं जिनको जो राजनीतिक शक्तियां वो हटा सकती है, लेकिन संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए अत्यंत कठिन प्रक्रिया बनाई गई है। उस प्रक्रिया को भी हम आगे जानेंगे, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका मानना था कि अगर हटाने की प्रक्रिया कठिन होगी तो जो उनके पद है वो सुरक्षित रहेंगे, और ये जो हमारे न्यायाधीश हैं वो बिना किसी भेदभाव के कार्य करते रहेंगे। जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका पर भी वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है, ये भी एक उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने का एक कदम था, क्योंकि इनके जो अगर इनको वेतन मिलता है तो इसके लिए इनको जो हमारी विधायिका है उसे कोई स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती, इनको ऑटोमेटिकली इनकी सैलरी मिलती है। अगर इनको जो इनके वेतन है भत्ते हैं अगर हम जो हमारी एग्जीक्यूटिव है हमारी विधायिका के अंतर्गत डाल देते तो इन पर थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ सकता था। इनके जो कार्य है उसकी आप व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। जैसे ये अगर कोई न्यायालय की अवमानना करता है, दोषी पाया जाता है, तो उसको जो हमारा न्यायपालिका है उसे दंडित भी कर सकती है। इससे क्या होता है कि जो न्यायाधीश उनको थोड़ी सुरक्षा भी मिलती है और उन्हें पता होता है कि देखिए हमारी कोई गलत आलोचना नहीं करेगा, मतलब एक आलोचना कर भी आप किसी पे अपना प्रभाव डाल सकते हैं ना, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसीलिए न्यायालय की अवमानना कोई करता है तो उसको दोषी मानकर को दंडित भी किया जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि न्यायालय की अवमानना करने के लिए उसको नोटिस मिला, कई नेताओं को भी मिलता है, आप देखते रहते होंगे। तो यहां पर उनको न्यायाधीशों को सुरक्षा दी गई है, और ये जो न्यायाधीश है उनके आचरण पर तभी चर्चा हो सकती है जब उनको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो, मतलब राजनीतिक जो दल है संसद है तभी उनकी आलोचना कर सकती है, जब उन पर कोई अवमानना का आरोप हो और संसद में प्रोसेस चल रही हो उनके हटाने की, अदरवाइज आप कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकते। और इससे वो लोग भयमुक्त रहते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय भी लेते हैं। तो ये बात भी हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की। अब ये स्वतंत्रता भी मिल गई उन्हें, अब है कि ये न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। तो देखिए ये जो मुद्दा है हमेशा हर बार राजनीति में गरमाया जाता है कि क्योंकि जो कुछ भी हो एक तरीके से ये लोग राजनीति से तो जुड़े होते ही हैं, क्योंकि पार्ट है हमारी सरकार का। लेकिन अब ये बात होती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बनेगा, चीफ जस्टिस भी कौन बनेगा, जज कौन बनेंगे। तो उसके लिए हमेशा कुछ प्रभाव बनाए गए हैं, कुछ बातें प्रतिबद्ध की गई हैं। इसमें सबसे जरूरी कहा जाता है कि जो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी उसमें जो भी उस समय सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ होगा तो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही मुख्य न्यायाधीश बनेगा। इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, परंतु ये लोगों के पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। उसके बाद एक जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वहां पे 10 जज हैं, अब उनमें से एक को चीफ जस्टिस बनना है तो वो कैसे बनेगा। इसके लिए जनरली माना जाता है कि जो भी इनमें सबसे सीनियर है वही चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश बनेगा और ये एक परंपरा को सबने मान लिया है। परंतु इस परंपरा को भी दो बार तोड़ा गया है। एक बार एक न्यायमूर्ति रे थे, रे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, बल्कि उनके ऊपर तीन सीनियर जज थे। वैसे ही 1975 में भी हुआ कि जो न्यायमूर्ति एचआर खन्ना को बनना था, बट उनको हटाकर एमित बैग की नियुक्ति कर दी गई। तो ये थोड़ा सा एक झटका था हमारी न्यायपालिका के लिए, क्योंकि इसमें राजनीति का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया था और एक ही ठीक बात नहीं थी। परंतु इस बात को पीछे छोड़ दिया गया और जो जितने भी न्यायाधीश हैं उन्हीं सब ने भी माना कि हमें खुद को अपने आप को इस राजनीतिक दबाव से दूर रखना पड़ेगा। तो जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति मैंने आपको पहले ही बताया, भारत के जो राष्ट्रपति वो करते हैं और उसमें मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी होती है। एक जो सबसे सीनियर है वो तो मुख्य न्यायाधीश बन गए और बाकी कौन कौन जज आएंगे उसके लिए राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस है वो उसमें सलाह देते हैं। और अब ये भी लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि जो वास्तविक शक्ति वो तो मंत्रिपरिषद के पास हुई, उनको सिर्फ चीफ जस्टिस को सिर्फ सलाह देने का हक है, ऐसा नहीं है। ये शुरू में न्यायालय का विचार था कि जो ये मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी भूमिका पूरी तरीके से सलाहकार की रहेगी, लेकिन बाद में जो न्यायालय है उसने खुद माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। और ये एक नई व्यवस्था शुरू की गई है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो अन्य और चार वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो लोग नाम प्रस्तावित करते हैं अन्य न्यायाधीशों के लिए और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। तो एक तरीके से इसको भी राजनीति के प्रभाव से दूर करने का न्यायालय ने खुद ही रास्ता ढूंढ लिया है। और इसको कहते हैं सामूहिकता का सिद्धांत, मतलब सामूहिक रूप से पांच जज मिलकर कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को वो मानना पड़ेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के इसमें जो न्यायाधीश हैं उनके समूह का ज्यादा प्रभाव रहेगा। तो यही कारण है कि अब धीरे धीरे जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां उसकी अहमियत भी बढ़ी और ये बहुत जरूरी है। देखिए, आप किसी भी डेमोक्रेसी में अगर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाए किसी भी संस्था के लिए तो फिर वो गलत होता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है जो पूरे देश के लिए तय कर रहे हैं कि क्या निर्णय होना चाहिए, वो कितने समझदार कितने ज्ञानी लोग होते हैं, तो उन्हें बिल्कुल हक मिलना चाहिए कि वो किस तरीके के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना चाहते हैं। तो ये बात हुई कि किस तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये नियुक्ति हुई। अब कभी कभी ऐसे मामले भी हैं जिसमें इनको जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जो जज होते हैं इनको हटाने की भी प्रक्रिया दी गई है, परंतु ये बहुत कठिन है। देखिए, ये जब उनके खिलाफ कोई कदाचार या अयोग्यता का कोई अपराध लगता है तभी उनको हटाया जा सकता है। आज तक शायद भारत में एक ही बार ऐसा हुआ है कि संसद में उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु वो भी आधे ही मार्ग तक गई और वो रुक गई बीच में, क्योंकि इसमें हमने चुनाव वाले में भी पढ़ा था कि एक विशेष बहुमत चाहिए इन जस्टिस का जो सिस्टम है उसमें जो जजेस थे उनको हटाने के लिए। तो ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। विशेष बहुमत आप समझ गए कि जो प्रेजेंट रहेंगे उस समय मतदान करने के लिए उनका 2/3 बहुमत चाहिए और पूरी संसद का 50% बहुमत चाहिए, है ना। ये था विशेष बहुमत, जिसको आपको याद रखना है, ये बार बार रिपीट होता रहेगा हर चैप्टर में, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका है ना, मंत्रिपरिषद के पास जाता है मामला कि जब उनको नियुक्त करना है, लेकिन हटाने में किसके पास शक्ति है, संसद, विधायिका के पास शक्ति है। तो ये एक शक्ति संतुलन भी है, देखिए, हमने कहा था ना, हमारा संविधान में बहुत अच्छा शक्ति संतुलन दिया हुआ है, तो पूरी कार्यपालिका को भी छूट नहीं है कि पूरा वो न्यायपालिका को अपने कब्जे में कर ले, और पूरा विधायिका को भी छूट नहीं है कि वो मनमाने ढंग से न्यायपालिका को चलाए। तो ये बहुत ही बढ़िया शक्ति संतुलन का उदाहरण भी है। तो अब तक एक ही, मैंने आपको पहले बताया कि एक ही प्रस्ताव आया था, लेकिन इस मामले में भी देखिए, सदन ने तो 2/3 सदस्यों ने उन जिस जज पर ये मामला हुआ था, वो उनका नाम था न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, उनपे कुछ वित्तीय अनियमितताएं का आरोप लगा था, मतलब पैसे का जो हम घोटाला एक तरीके से कह सकते हैं, और उन्होंने सार्वजनिक धन को कहा कि उन्होंने अपने निजी यूज के लिए उपयोग किया, इस तरीके का उनपे आरोप लगा था। तो सदन में तो उनको 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव उनके मतलब उनके पक्ष विपक्ष में मतलब एक तरीके से कि इनको हटाया जा सकता है, कहा कि इनको हटाया जा सकता है। तो 2/3 सदस्य उस समय जो प्रेजेंट थे उन्होंने तो वोट कर दिया कि इनको हटाएं, लेकिन फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, सदन के जितने सदस्य हैं उनके 50% जो सदस्य उनको भी कहना पड़ेगा कि आप इनको हटाइए। तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी वो वोट देने नहीं आई, तो जो 50% कोरम मिलना था उनको हटाने का वो नहीं मिल पाया, और इस तरीके से वो जो प्रस्ताव था वो आधे समर्थन उसको मिला नहीं और वो फिर गिर गया। तो ये हम समझ गए कि किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है, इनको हटाने की प्रक्रिया विशेष बहुमत की प्रक्रिया से हम जो न्यायाधीश हैं उनको हटाते हैं। एक ही मामला ऐसा हुआ है और ये अत्यंत ही कठिन प्रक्रिया है। अब आप अगले पृष्ठ पे आ जाएंगे, पृष्ठ क्रमांक 130, न्यायपालिका की संरचना। न्यायपालिका की संरचना मतलब इनका स्ट्रक्चर क्या है। भारत में आप सुनते हैं ना, अभी हम पढ़ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ये अलग अलग हमारे यहाँ पर इनकी एक संरचना है, इनका अलग अलग रूप है। अब हम इसको समझेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसमें एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना है। एकीकृत मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर इस तरीके से है। जैसे आप अपने स्कूल में देख लीजिए, आपकी कक्षा में मानिए कभी कुछ दो बच्चे आपस में झगड़ लेते हैं, तो पहले हम मॉनिटर के पास जाते हैं, है ना, मॉनिटर, क्लास मॉनिटर होता है, उससे कहते हैं, फिर वो नहीं सुनता तो फिर हम हमारे टीचर के पास जाते हैं। अगर मामला बड़ा है, टीचर भी ना सुलझा पाए, तो आप फिर अपने वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, ऐसे एक मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। तो ये एकीकृत व्यवस्था है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको जस्टिस मिलने के सिस्टम खुले हुए हैं। वैसे ही हमारे देश में ये सिस्टम है, क्योंकि जो विश्व के अन्य संघीय देश हैं, संघ मतलब जहाँ पे शक्ति राज्य केंद्र में जहां बटी होती है, वहां उस देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, एक के ऊपर एक पिरामिड, देखा होगा आपने कैसा होता है। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, इस तरीके के ये स्टेजेस हैं। तो अब हम इनको, ये एक आपके सामने चित्र है, इसको पहले देख लेते हैं तो आगे इसको हमें समझना आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले टॉप पर होती है भारत की सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो ये जो भी फैसला देगी इसको सारी अदालत लोगों को मानना पड़ेगा। ये चाहे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकती है, ये कह सकती है किसी अदालत को कि आप मुकदमा नहीं संभाल पा रहे, आप मुकदमा हमें भेजिए, और ये एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भी मुकदमे को भेज सकती है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय, ये एक ही है हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद आती है उच्च न्यायालय। जो उच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के थोड़ा सा नीचे है, ये निचली अदालतों के फैसलों पर अपील सुन सकती है। जैसे निचली अदालत में कोई मामला गया, इनसे जो नीचे की अदालत है उस मामले को भी ये लोग सुन सकते हैं। ये मौलिक अधिकारों को बहाल करने की हम रिट जारी कर सकते हैं। रिट हमने पढ़ी थी, 5 रिट, जब मौलिक अधिकारों की बात की थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको याद आ रहा होगा सारा, तो ये उसकी सुनवाई कर सकते हैं। ये राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्र पूरा देश है, वो किसी भी देश के मामले को ले सकता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो ज्यादातर एक राज्य में एक है, कुछ राज्यों में जरूर मिली हुई है, जैसे पंजाब और हरियाणा की एक है, महाराष्ट्र और गोवा की एक उच्च न्यायालय है। तो जो हमारे देश के उच्च न्यायालय हैं उनका कुछ राज्यों तक ही क्षेत्र है, तो वो निर्णय उस राज्य के अंतर्गत ही दे सकते हैं और ये अपने नीचे की अदालतें जो है उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण करती हैं। उसके बाद आती हैं जिला अदालतें। जिला अदालतें मतलब हर जिले में होंगी, ये पहले हुई एक सुप्रीम कोर्ट देश के लिए, फिर राज्यों के लिए, अब कुछ अदालतें जिलों के लिए होती है। ये मुकदमे सिर्फ किसकी सुनवाई करती है, जो जिलों में है, और ये अपने से भी जो इनके नीचे की जो अदालतें अपील अदालतें होती हैं जिसमें फौजदारी दीवानी मुकदमे चलते हैं उनकी सुनवाई करती है, और ये खासकर आपराधिक मामलों पे बहुत फैसला देती हैं। छोटे मोटे जो भी जुर्म होते हैं, हत्या का मामला या कोई अलग मामले, उस पर जनरली इन्हीं में केसेस चलते हैं। और कुछ होती है अधीनस्थ अदालतें, इन पर ये जो अधीनस्थ अदालतें होती हैं ये सबके ही अधीन होती हैं, तो इनका केस डायरेक्टली कहीं पर भी जा सकता है, और ये खासकर फौजदारी और दीवानी मुकदमों पर विचार करती हैं। आप ये फौजदारी और दीवानी जानते हैं क्या होता है? देखिए, जो दीवानी मुकदमे हैं वो भूमि से संबंधित, धर्म से संबंधित, धन संपत्ति से संबंधित, ये सब दीवानी मुकदमे जो अपने डेली के आप तो देखते हैं, और फौजदारी जनरली आपराधिक मामले होते हैं, जो गलत कामों के जो मामले होते हैं, कृत्यों के, हत्या वगैरह, वो जनरली आपराधिक होते हैं, तो वो उनको हम फौजदारी कहते हैं, और दीवानी धन संबंधित, भूमि संबंधित, संपत्ति समेत लोगों के बीच में मोटर गाड़ियां टकरा गई उनका जो मामला होगा वो सब दीवानी कहलाएंगे। लेकिन जो अपराध है जहां पर कोई हत्या कर दी गई, कुछ इस तरीके का गलत जुर्म कर किया गया, जहां किसी व्यक्ति को विशेष हानि पहुंची हो, वो सब फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। तो ये है हमारे कोर्ट की संरचना, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर जिला अदालतें, और फिर अधीनस्थ अदालतें। अब हमने कहा कि इनके अपने अपने क्षेत्र हैं, है ना, तो इसमें सबसे जरूरी जो बात है वो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का जो एक ये इतने शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन सर्वोच्च का मतलब है कि उनमें काफी ताकत है, पर ये नहीं कि वो कुछ भी तय करें, तो इसीलिए संविधान ने इनके लिए भी एक सीमा बनाई है, इनको कुछ कार्य दिए हैं, और इनके जो उत्तरदायित्व हैं वो संविधान में लिख दिए गए, और ये इनके जो क्षेत्राधिकार हैं ये थोड़े से अलग हैं, और आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा अलग है। आइए इसको थोड़ा सा पहले इस चित्र में समझ लेते हैं। पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार। देखिए, मौलिक में क्या होता है, हमारे देश की जो शक्तियां हैं केंद्र और राज्यों में बटी हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होता है, केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है या राज्य राज्य के बीच में होता है, तो ये सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। आप देखिए, अभी कावेरी जल विवाद चल रहा है ना, दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं ये कावेरी नदी का जल हमारे पास है, वो कहता नहीं हमारे पास है, तो इसका निर्णय कहीं उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय कहीं नहीं होगा, ये सीधे मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। कई बार केंद्र और राज्य में भी कुछ अनबन हो जाती है कुछ विषयों को लेकर, तो वो मुद्दे भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं, तो ये इन्हीं का ही क्षेत्राधिकार है मौलिक, इसको हम क्षेत्राधिकार कहते हैं, जहां पर संघ और राज्यों के बीच या राज्यों राज्यों के बीच कोई विवाद होगा उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करता है। फिर है अपीली। अपीली में जो भी दीवानी मुकदमे, फौजदारी मुकदमे हैं, वो उनसे जुड़े जो सवाल हैं, तो उनसे जुड़े सवालों को जो अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर ही सुनवाई करता है। इसका मतलब है कि देखिए, एक ये प्रोसेस से जाता है कि जिला अदालत में कोई मुकदमा कोई हार गया तो फिर वो उच्च न्यायालय में अपील करता है, अगर वो उच्च न्यायालय में भी अपील हार गया, वो मुकदमा हार गया, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है। तो आपने ये केसेस देखे होंगे कि कहते हैं कि यहां से हार गया, अब उसने अगली कोर्ट में गया, तो ये एक प्रोसेस है। फाइनली अगर सर्वोच्च न्यायालय में आप पहुंच गए उसके बाद सिर्फ आप राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हैं, बाकी कहीं आप अपील नहीं कर सकते, खासकर जब आपको मृत्यु दंड मिला हो, है ना। तो ये जो मुकदमे होते हैं वो फाइनल अपील आप सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है उसका एक क्षेत्राधिकार सलाहकारी भी है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अगर कुछ सलाह चाहें किसी कानून के मामले में तो वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकती है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस तरीके का एक वाद विवाद चल रहा है, ये कानून है, इसको कैसे समझना चाहिए, इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, वो जब राष्ट्रपति उनसे सलाह मांगे, ऐसा नहीं कि अपने मन से देंगे, जब राष्ट्रपति उनसे सलाह मांगे तो वो सलाह दे सकते हैं। रिट के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये बात आप जान चुके हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा, ये हमने 5 रिट के बारे में पढ़ा था। इसके लिए भी आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अब है विशेष अधिकार। देखिए ये कहा गया है कि भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई की शक्ति होती है। जी हाँ, स्पेशल विशेषाधिकार, आजकल हम इसको PIL भी कहते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आजकल कोई लोग होते हैं ना, कोर्ट में हमने PIL दायर किए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, ये भी इनका एक विशेषाधिकार है। तो अब हम ऊपरी तौर से समझ गए कि क्या क्षेत्राधिकार है, अब इनको थोड़ा सा अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप अगले पृष्ठ पे आ जाइए, जो है पृष्ठ क्रमांक 172, मौलिक क्षेत्राधिकार। देखिए मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, जो संघ के मामले, राज्यों के मामले, इनके लिए कोई जरूरत नहीं कि आप सबसे छोटी अदालत से शुरू करें, सीधा आप मौलिक क्षेत्राधिकार के अनुसार आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसीलिए कहते हैं क्योंकि केवल सर्वोच्च न्यायालय ही इसे हल कर सकता है। ये बात आपको क्लियर हो गई कि मौलिक क्षेत्राधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। और जनरली इसमें संघ और राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको कावेरी विवाद का उदाहरण दिया। इस तरीके विवाद आते रहते हैं, आप अखबार पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके के, खासकर धनराशि को लेकर, राजस्व को लेकर दो स्टेट में बहुत झगड़े होते हैं। कभी केंद्र से भी उनका झगड़ा हो जाता है कि हमें इतना राजस्व नहीं मिला। इस तरीके के जो भी मुद्दे हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगला है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। देखिए मौलिक अधिकारों का हमने पढ़ चुके हैं और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, वहां पे वो रिट लगा सकता है। रिट उच्च न्यायालय भी लगा सकती है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कहां जाना चाहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मैंने कहा ना, उसके पास ये चॉइस है, ये विकल्प है, वो कहां जाना चाहता है। तो ये रिट का भी एक क्षेत्राधिकार है। अपीली क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। मतलब ये मामला गंभीर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी मामला हम उच्च न्यायालय में ले जाएं। अगर फौजदारी के मामले में जो निचली अदालत है वो किसी को फांसी की सजा दे तो आप ऊपर जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना, अगर फांसी का, अभी आप सबने अखबार में निर्भया कांड के बारे में पढ़ा होगा, किस तरीके से वहां दोषी अपील पे अपील करते जा रहे थे, फिर उनकी अपील राष्ट्रपति ने ठुकराई, फिर उन्हें फांसी हुई। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया का पूरा मामला था, चाहे आप कितने भी जुर्म किए, लेकिन आपको जस्टिस मिलने का हमारे देश में सबको हक है। तो यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा ना दे तो भी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके पास शक्ति है कि वो अपील ले सकती हो, विचार कर सकती है। तो ये जो अपीली क्षेत्राधिकार है उसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पे फिर से पुनर्विचार करेगा, उस मुद्दों की जांच करेगा और अगर न्यायालय को लगा कि निचली अदालतों ने ठीक निर्णय नहीं दिया है तो निर्णय बदल भी सकता है। फिर है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति हैं वो लोक हित या संविधान की व्याख्या से संबंधित, संविधान से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, पर ना तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको दरी नहीं है कि वो सलाह दे, मतलब उनसे पूछा गया तो हो सकता है वो मना भी कर सकती है, और अगर कोई वो राय देते हैं तो जरूरी भी नहीं कि राष्ट्रपति न्याय को जो भी उनकी सलाह है उसको माने। तो दोनों ही फ्री हैं, पर राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो पूछ सकते हैं, वो सलाह मांग सकते हैं। अब ये बात आती कि जब इस शक्ति का फिर जब वो परामर्श माने ना माने तो परामर्श पूछा ही क्यों जा रहा है ना, ये सवाल तो उठता है। तो देखिए इससे क्या होता है कि सरकार को एक तो आइडिया मिल जाता है कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे डिसीजन दिया है तो कानूनी राय थोड़ी तय हो जाती है कि कहीं इस पे केस तो नहीं हो जाएगा, हमने अभी लॉ बनाया है। तो वो जो सरकार है कानूनी विवाद से बचने के लिए एक तो ये तरीका अपनाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की राय लेती है, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित जो कि निर्णय है या विधेयक है उसमें संशोधन कर सकती है। संशोधन मतलब उन्हें पता चल जाएगा कि शायद ये हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो इससे एक क्लैरिटी आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ आपके ये ब्रैकेट में उन्होंने कुछ अनुच्छेद लिखे हैं, है ना। देखिए अनुच्छेद 37 लिखा है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। तो ये कुछ इनके अनुच्छेद हैं। तो ये जो अनुच्छेद हैं ये हमें भारत की न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करती है। और जो सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला लेगा वो सब पर बाध्यकारी, मतलब सारे न्यायालयों को उसको मानना पड़ेगा, और जो उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है पूरे देश में लागू होता है। और सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है, वो कभी भी उसकी समीक्षा भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में भी वह स्वयं ही देखता है, वो पुनरावलोकन कर सकता है। मतलब अगर एक आज से 30 साल पहले कोई केस हुआ हो और कोई कहेगी देखिए आपने तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इसका डिसीजन लिया था और आप तो अब इसका उलट डिसीजन ले रहे हैं, तो वो अपना पुनरावलोकन कर सकता है, वो देख सकता है कि पहले ऐसा क्यों हुआ था और अब हमने ये जजमेंट क्यों बदला, तो वो अपने आप को ही खुद जज कर सकता है। ये भी एक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और अगर किसी ने वो मतलब इसके लिए जो आपने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना, अगर किसी ने अवमानना की उसकी की बात को डिनाय किया या नहीं माना तो भी वो उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है। तो आज इतना हमें क्लियर हुआ कि हमने क्या पढ़ा है। कल हम एक न्यायिक सक्रियता से शुरू करेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है हमारे न्यायपालिका का, इसको हम जानेंगे कल अगले टॉपिक में। आज हमने न्यायपालिका से शुरुआत की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को जाना कि न्यायपालिका की स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है, क्या कारण है, क्योंकि वो हमारे सरकार का एक अभिन्न अंग है। उसके बाद हमने जाना कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की सलाह पर होती है और न्यायाधीश का खुद का भी अपना एक रोल होता है। इनको हटाने की भी एक प्रक्रिया है जो विशेष बहुमत के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद हमने हमारे न्यायालय को जाना कि इनकी संरचना क्या, इनका स्ट्रक्चर क्या, ये एकीकृत है, मतलब एक के ऊपर एक पिरामिड शेप में है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला अदालत और उसके बाद आते हैं अधीनस्थ अदालतें। फिर हमने भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार को जाना, एक है मौलिक जहाँ पे वो जो केंद्र और राज्य है उनके मुद्दों को सुलझाता है, फिर है अपीली, कोई भी संविधान से जुड़ा या दीवानी फौजदारी मुकदमा है उसकी आखिरी अपील न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सलाहकारी यहाँ पे राष्ट्रपति उनसे कानूनी सलाह ले सकते हैं, रिट, रिट तो मौलिक अधिकारों का हनन होगा उस पर वो रिट लगा सकते हैं, और उसके बाद है उनका विशेषाधिकार कि देश में कहीं भी कोई मामला हो उस पर स्पेशल आप लेख पिटीशन लिखकर आप उस पर अपील सुप्रीम कोर्ट में उस पर की जा सकती है, कोई ऐसा मामला हो जिससे बहुत लोगों की लाइफ जुड़ी हो उसको जो हम PIL कहते हैं उस पर भी वो विशेषाधिकार रखती है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर से आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।